السلام علیکم جی، ویلکم ٹو ہفتے کی سیدھی بات۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ ایز آلویز۔ اچھا جی، میں آل جمپ اسٹریٹ ان ٹو دس، کیونکہ کل شام کو ایک بڑے مزے کا انٹرویو آیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے جو پوری کی پوری ایپیسوڈ ہے نا، وہ آئی ہیڈ ٹو گو تھرو اٹ ان ڈیٹیل، اور پھر میں نے کہا کہ ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے تسلی سے یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کرتا ہوں، تاکہ کافی مزے کی باتیں ہیں جو کہ ڈسکس کرنے والی۔ اچھا جی، تو کل رات کو بلاول صاحب کا انٹرویو آیا تھا نصرت جاوید صاحب کے پروگرام پہ۔ نصرت جاوید صاحب نے بہت بڑا فیور کیا کہ بلاول زرداری کو انٹرویو کا چانس دیا۔ اٹس ناٹ دا ادر وے اراؤنڈ، لیٹس بی کلیئر، کہ پیپلز پارٹی کو جتنی بھی میڈیا پریزنس مل جائے وہ غنیمت ہے اس وقت، کیونکہ وہ خرید نہیں سکتے ماس وائے کیپٹل ٹی وی کے، تو ان کے پاس آپشنس بڑی کم ہیں جہاں پہ لوگوں ایکچولی ان کی بیٹھ کے بات سنیں گے۔ تو نصرت جاوید صاحب نے ان کو ایک بہت بڑا فیور کیا، اور وہ بہت مزے کا انٹرویو تھا۔ تو ایک تو نمبر ون، اس کے بارے میں انٹرویو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ان ڈیٹیل، جو اپنا بلاول صاحب نے باتیں کیں اور جو اوور آل ڈسکشن تھی اور اس کا جو نیریٹو بلڈ اپ ہوا تھا، ایک تو میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نمبر ون، اور جو دوسری میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چینجز ود ریگارڈس ٹو ہماری اکانومی اور سی پیک کے اوپر آ رہی ہیں، جو ہمارے ٹریڈ کے ایشوز ہیں، ان کے بارے میں ایک دفعہ ذرا تھوڑی سی تسلی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سو ایک میں انتہائی پولیٹیکل ٹاپک، جو کہ انتہائی پاپولر ہوتا ہے ہماری عوام کے اندر، ایک وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، دوسرا میں کافی سیریس ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو ٹیکنیکل ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ود دا پولیٹیکل ون۔ جی، پولیٹیکل ٹاپک کے اوپر یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آ کے، ماشاء اللہ ان کی اردو بہتر ہوگی ہے، کانگریٹس ٹو ہیم، انگریزی ان کی ماشاء اللہ شروع سے بہت اچھی تھی، وہ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، تو اینی بڈی ہو ڈزنٹ ایکچولی لیو ان پاکستان بیکاز دے ہیو ٹو کمیونیکیٹ ان اندر لینگویج، سو بائی ڈیفالٹ دیٹ از اے ویری اٹس مور فلوئنٹ۔ اور اس کے اندر یہ بھی ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جب آپ کا خاندان خرید سکے چیزیں آپ کے لیے، ایجوکیشن خرید سکے، ڈگریاں خرید سکے، تو اس کا ایک اپنا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے۔ اچھا، دیٹ بینگ پٹ اسائڈ، اس میں اب یہ ہے کہ جی، انہوں نے تین یا چار باتیں کہی ہیں جو بڑے مزے کی تھیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ جی، ہم لوگ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، انہوں نے دوسری بات یہ کی تھی کہ جی، جو یوتھ ہے نا، اس نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ پریفر کرے گی پی 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 کو اوور پی ٹی آئی۔ اور جو تیسری بات انہوں نے کہی تھی، انہوں نے ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا آرگیومنٹ پیش کیا تھا ود ریگارڈس ٹو کہ جی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ واپس اٹھ کے آنے والی ہے، یعنی بلکہ یہ کچھ پرسوں ترسوں آنے والی واپس۔ اچھا جی، نمبر ون، اس کو ذرا تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں تینوں پوائنٹس کے اوپر۔ جی بالکل، کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر انکلوڈنگ تحریک انصاف ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہے، اور اس کی لاجک یہ نہیں ہے کہ یہ کہ سارے کے سارے بہت بڑے ڈیموکریٹس ہیں، اس کی لاجک یہ ہے کہ جی، ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے اندر ان میں سے کسی کو بھی کھے نہیں ملتا۔ تو یہ بڑی لاجیکل سی بات ہے، یہ دس از پولیٹیکل سائنس 101۔ دا ریزن آپ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہو، اس لیے پولیٹیکل پارٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایون ان اپوزیشن آپ سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چانس نکل آئے گا ایٹ لیسٹ تھرو آؤٹ دا پوائنٹ کہ جہاں آپ اپوزیشن میں ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو کم از کم ڈیولپمنٹ فنڈز اور باقی گورنمنٹ ریسورسز تک آپ کی رسائی رہتی ہے، ٹھیک ہے، کم ہو جاتی ہے۔ دا ڈفرنس بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن از کہ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے آپ کی رسائی اسٹیٹ ریسورسز تک زیادہ ہوتی ہے، اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ کی رسائی اسٹیٹ ریسورسز تک کم ہو جاتی ہے۔ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم وہ رسائی ختم نہیں ہوتی، وہ رہتی ہے، اس کا ہجوم اوپر اور نیچے ہوتا رہتا ہے۔ بڑی سمپل سی لاجیکل سی بات ہے یہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے جناب کہ وہ جو اسٹیٹ ریسورسز تک رسائی ہے نا، جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، جو باقی آپ کے پاس پلاننگ کمیشن کے فنڈز ہوتے ہیں یا ڈسکریشنری فنڈ ہوتا ہے، وہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے اندر ان میں سے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ نہیں آتا پھر، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ جے یو آئی ایف ہو۔ سب سے زیادہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹس کے خلاف ایکچولی یہ ریلیجس جماعتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا جو کھاتا ہوتا ہے نا، وہ بنیادی طور پہ ان کی ساری جو گیم ہوتی ہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس تک رسائی کی ہوتی ہے۔ اگر وہ رسائی ہی ختم ہو جائے سرے سے، تو یہ کیا کریں بیچارے، کیونکہ ان کے پاس وہ سپورٹ کا جو نیٹ ورک ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، جہاں سے یہ جیتتے ہیں اس کے لیے ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے پیسے پھینکنے کی۔ कि जी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करा दें, फलाना करा दें, ये करा दें, वो करा दें, उसके बगैर काम नहीं होता जनाब। तो उसका तरीका कार बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि इनमें से कोई भी जमात कभी भी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के हक में नहीं होगी। दैट डज़ नॉट मीन कि ये डिक्टेटर के हक में नहीं होंगे, दैट इज़ ए वो एक बारीकी है जो कि समझने की ज़रूरत है। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिक्टेटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। डिक्टेटर को लेजिटमेसी चाहिए होती है और वो अपने इर्द गिर्द पोलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, अल्बियट अपने नीचे इकट्ठा करने की कोशिश करता है। उसके लिए वो स्टेट रिसोर्सेज तक एक्सेस और रसाई आम बनाने की कोशिश करता है टारगेटेड तौर पे। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर नंबर वन स्टेट रिसोर्सेज तक रसाई कम हो जाती है। नंबर टू, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर द होल पॉइंट ऑफ अ टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ टू साइडलाइन पॉलिटिशियंस। उसमें बांग्लादेश मॉडल मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, उस तरीके से ये होता है कि सबका फिर एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी खुल जाती है। उसके अंदर एक दफ़ा वो खाते खुल जाते हैं ना, तो फिर वो खाते काफ़ी अरसा चलते रहते हैं, और वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की लॉजिक ही ये होती है कि एक दफ़ा खाते खोलो। सो दैट बीइंग सेड, इट इज़ क्लियर कि जरदारी साहब डेफिनेटली वो नहीं चाहते, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि इनकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस तक रसाई खत्म हो जाएगी। सिंध को ये कंट्रोल करने में, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बगैर सिंध किस तरह कंट्रोल करते हैं, ये नहीं कर सकते ना। तो वो रसाई ख़त्म हो जाएगी। नंबर टू उसमें यह है कि जी खाते खुल जाएंगे ना, ये खाते यानी इतने सालों के बाद वो केसेस रफा दफा कराएं, और अभी भी उनमें से काफ़ी केसेस खुले में, वो अगर NRO भी साइन किया, अब उसके बाद बैठ के ये फिर से टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट में आ जाएं, तो ये बेचारे क्या करेंगे, इनकी तो पार्टी का खे नहीं बचना, ठीक है ना। तो एक तो वो बात क्लियर है, वो ऐसी नहीं है कि वो जरदारी साहब बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, वो बात ये है कि जी मजबूरियाँ होती हैं, वो मजबूरी की बेस पर बात कर रहे हैं। वो तो इमरान खान भी एग्जैक्टली यही बात करेंगे इस बारे में, इस टॉपिक पे सारे इकट्ठे हैं। दूसरी बात आ जाएँ जी कि जी 44% ऑफ द इलेक्टोरेट 18 से 35 साल की उम्र के दरमियान में है, बिल्कुल अच्छी बात है जी। और वो इलेक्टोरेट जो है वो सारे का सारा तहरीक इंसाफ की तरफ है, कंप्लीट नॉनसेंस। और इनके जरदारी साहब के मुताबिक ये है कि जी वो पीपल्स पार्टी की तरफ है जी, कम्प्लीटली नॉनसेंस। एक तो एज पार्ट ऑफ दैट डेमोग्राफिक मैं तंग आ गया हूँ ये मीडिया पर्सन से और पॉलिटिशन से, जिनको खे नहीं पता स्टेटिस्टिक्स का, जिनको खे नहीं पता हमारी जियोग्राफी का। ये इतना ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह के वो 44% 18 से 35 साल की उम्र के दरमियान के लोग जो हैं वो मोनोलिथिकल हैं। उसका क्या मतलब है? एज इफ कि हम सारे के सारों की अप्रोच सेम है, हम सारे के सारों की रिक्वायरमेंट सेम है, हम सारे के सारों की ओपिनियन सेम है, या हमारे पॉलिटिकल लीनिंग सेम है। जनाब मेरे और मेरे भाई की पॉलिटिकल लीनिंग के अंदर फ़र्क है, ठीक है। मेरी और मेरी बहन की पॉलिटिकल लीनिंग्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। मेरे दोस्तों की पॉलिटिकल लीनिंग्स मेरे से जो अब बेचारे बच गए हैं, कोई 3-4 रह गए हैं पाकिस्तान में मेरे दोस्त, उनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स मेरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ये जो एक मिथिकल बात की जाती है ना कि जी वो जिस तरह 44% वो चंक ब्लॉक वोट है, वो उसने इधर जाना है या उधर जाना है, ये दिस इज़ कम्प्लीट नॉनसेंस। वो वोट इंतहाई डिवर्स वोट है, क्योंकि अगेन मैं इलेक्शनियरिंग की हुई है, हम लोगों ने बैठ के इसकी मैथ निकाली हुई है यार। बात यह है कि जी वो ज़्यादातर जो वोट है ना, 44% का जो बिगेस्ट चंक है वो है पंजाब में, फिर KPK में, फिर सिंध में, और फिर बलूचिस्तान में। KPK का जो वोटर है ना, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, इस मुल्क के अंदर जो प्रॉबली सबसे डेमोक्रेटिक वोटर है ना, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो KPK का वोटर है। KPK का वोटर जितनी पार्टियां KPK एज अ प्रोविंस चेंज करता है ना पिछले 30 साल के अंदर, इतनी किसी और प्रोविंस ने की। और उसकी बुनियाद ये है कि KPK के अंदर हुकूमत में रहते हुए अगर आप डिलीवर नहीं करते तो KPK की आवाम चुक के आपको बाहर मारती हैं। सबसे डिफ़िकल्ट बाय इलेक्शंस जो होते हैं ना जीतने, मासवाय कुछ सेफ सीट्स के, KPK के अंदर होते हैं, क्योंकि KPK के अंदर एक्चुअल मुकाबला लगता है। हम लोग KPK को क्रेडिट बहुत कम देते हैं इन चीज़ों का, हालांकि हमें देना चाहिए। पंजाब के यूथ की रिक्वायरमेंट्स बहुत डिफरेंट हैं KPK के और यूथ के मुताबिक। KPK का यूथ ये कह रहा है कि हम लोगों ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जाके और वापस घर हम लोग सेफली आ जाएं। उनके कंसर्न सिक्योरिटी बेस्ड हैं, उनके कंसर्न फिर इकोनॉमिक बेस्ड हैं। पंजाब के अंदर इंटरेस्ट आर प्राइमरली इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक के बाद वो कंसर्न्स किसी हद तक सिक्योरिटी बेस्ड हैं, और किसी काफ़ी हद तक सोशल है। ये डायनामिक सिंध के अंदर कराची और हैदराबाद से आगे नहीं है। कराची और हैदराबाद से आगे डायनामिक इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के कंसर्न्स बहुत और हैं। तो ये जो मिथिकल नॉनसेंसिकल आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है ना कि जी सम हाउ 44% जो ये यूथ वोट है या जिसको आप कह रहे हैं यंग एडल्ट वोट है 18 से 35 साल का, इसने मोनोलिथिकली एक ब्लॉक में वोट करना है, इज़ कम्प्लीट नॉनसेंस। एक तो ये मिथ ख़त्म की जाए। सेकेंडली, किस मुंह से बिलावल साहब बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी को ये वोट जाएगा? पीपल्स पार्टी की ग्राउंड प्रेजेंस पंजाब में और KPK में ना होने के बराबर है। और ये जरदारी साहब उसी ट्रैप में रहते हैं जिसके अंदर इनके इर्द गिर्द कोई अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 मालशिये इकट्ठे हुए हैं। द ओनली डिफरेंस पीपल्स पार्टी और नून लीग के मालशियों के अंदर जो डिफरेंस है ना जनाब, वो वार्डरोब का है और एक्सेंट का है। सिंपल, पीपल्स पार्टी के मालशियों की अंग्रेजियाँ ज़रा बेहतर हैं, कपड़े शपड़े ज़रा फैशनेबल पहन लेते हैं और बातें फैशनी कर लेते हैं। नून लीग के मालशियों के अंदर ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी देसी हैं, बात वो अपना एक्सेंट मार के अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आती है जनाब, और जो कपड़े हैं वो ज़रा लोकल पहनते हैं, ठीक है, यहाँ ज़रा अपना दूसरे किस्म के पहनते हैं। इनके मालशियों का लेवल जो है ना, मेंटल लेवल, वो सेम है। उनकी आउटलुक डिफरेंट है, मेंटल लेवल सेम है। वो इनको लीडर्स को एक अजीबो गरीब बबल में रखते हैं कि जहाँ पे ओ बल्ले 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 बल्ले, ओ जी बेहतरीन, ओ जी तुसी फिक्र ही ना करो, सर सर बेहतरीन, यहाँ बिलावल, ओ माय गॉड बिलावल कितनी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, ओ माय गॉड आई एम सो इम्प्रेस्ड, इतनी डिटेल। अबे भाई उस बंदे का कोई 18वां रीलॉन्च है यार। या मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं जब कॉलेज से ड्रॉप आउट हुआ था ना 2005-06 के अंदर, तब बिलावल लीडर बनाया जा रहा था। अल्लाह का शुक्र है मैं PhD अपनी कंप्लीट करने के करीब हूँ और बिलावल अभी तक यंग लीडर बनाया जा रहा है। लोगों के लिटरली मैं कहता हूँ बच्चे पैदा होके स्कूलों के अंदर क्लास 7 में पहुँच चुके हुए हैं और बिलावल अभी तक जो है ना उसकी लॉन्च ही नहीं ख़त्म हो रही है। यानी आप किस मुंह से बातें कर रहे हैं यार कि पीपल्स पार्टी के पास आएगा? अबे भाई तू लाहौर के अंदर जा, तू साउथ पंजाब में जा, वो निकलना पीरों फकीरों की वो जो अपना हवेली है उनसे बाहर निकल के, तो आप कभी देखे ना जनाब कि बाकी पंजाब की शक्ल क्या है। या KPK के अंदर आप कभी वहाँ पेशावर से आगे निकल के नीचे DI खान तक आए ना ज़रा कभी, तो फिर बात करते हैं कि वहाँ पर हालात क्या हैं और पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो ये बातें हवाई बातें होती हैं। सेकंडली, एक मोनोलिथिकल बातें नॉनसेंस बंद करें जी। ये इसके ऊपर ये अगर मीडिया इस तरह की बातें करता है ना तो उसको कम से कम कॉल इट आउट। और दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी ये बातें हवा में सौ बिस्मिल्लाह कर ले, सौ बड़ी प्यारी बातें, बट इनसे आगे चलने की ज़रूरत है हमें। और ये जो बात करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी का एक डिजमल किस्म का डाउन टर्न नहीं है और पीपल्स पार्टी उठ के वापस आएगी, जनाब पीपल्स पार्टी उस की चांसेस ऑफ कमिंग बैक आर रफली द सेम एज मी गेटिंग अ यूनिकॉर्न। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, लोग हंसते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम डेड सीरियस। मैं जो हूँ ना फैक्चुअल बंदा हूँ, मुझे आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज गिनाएं, सब छोड़ दें, मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसीज गिनवानी शुरू करें कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी कैन रैशनली स्टार्ट कमिंग बैक। पीपल्स पार्टी ने कम बैक करना है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ गिनवानी शुरू कर दें, यूँ करें सब छोड़ें, मुझे 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज गिनवा दें जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने कम बैक करना है अगले इलेक्शन के अंदर। ये जो बंगियां मारते हैं ना, इनसे कोई बैठ के ठोक के सवाल तो पूछे कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी गिनवाओ, आप इतने बड़े लीडर बनने की कोशिश करते हो, आप बताओ तो सही कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से आपने वापस आना है। तो वो मेरी अपना जो इंटरव्यू बिलावल साहब को चांस दिया करने का, वो चलें गल मुक्की हो गया, ख़त्म हो गया, अब आगे चलें हम लोग उसके बारे में दफा करें। दूसरी बात जी, एक तो आप लोगों में से आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन the movements in China recently. Xi Jinping came out with his new Politburo. Unki party congress is saal mein 5 saal ke baad ek dafa hoti hai, aur it's a major conference jiske andar basically they set up the plan for the future. Uske alawa pichle kafi dinon ke andar aur bhi articles aa rahe hain South China Morning Post ke andar, aur jo इकोनॉमिस्ट हैं या बाकी मेजर पब्लिकेशन हैं इस रीजन के अंदर, उनके अंदर डिस्कशन आ रही हैं। और उसके अंदर एक बात क्लियरली हो रही है कि वाइल पाकिस्तान इज़ अ टेस्ट केस फॉर द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स, पाकिस्तान को उतना बेनिफिट हो नहीं रहा जितना उसके बारे में बात की जा रही है। और ये एक ज़रा एज एन इकोनॉमिस्ट ये बात सोचने वाली है मेरे लिए भी और आपके सबके लिए भी, और ये डिस्कशन का पॉइंट है कि वो जो बेनिफिट जिसकी बात की जा रही थी ओरिजिनली स्पीकिंग, कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसका एक नॉक ऑन इफेक्ट आता है, जैसे जॉब्स क्रिएट होती हैं, जॉब से कंपनीज क्रिएट होती हैं, कंपनीज स्पेशलाइज करती हैं, स्पेशलाइजेशन के बाद वो आगे उस स्पेशलाइजेशन को कहीं और पे मार्केट कर सकती हैं, बैंक्स को एक चांस मिलता है इन्वेस्ट करने का, बैंक्स को चांस मिलता है प्रॉफिट मेकिंग का, वो सारी बातें धरी की धरी रह गई हैं, बिकॉज इसेंशली एट दिस स्टेज सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फंड हो रहे हैं थ्रू चाइनीज़ बैंक्स, सारी की सारी जो लेबर कॉस्ट और लेबर कंपनीज हैं वो सारी की सारी एम्प्लॉय हैं जो कि चाइनीज़ बेस्ड हैं, और लेबर जो आपके पास इन प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी हद तक यूज़ हो रही है वो चाइनीज़ लेबर है, विच इज़ वेल एंड गुड, बट उसका प्रॉब्लम ये है जनाब कि उसके अंदर चाइना हैज़ अ हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स अ सर्टन वे। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो लीडर्स हैं या हमारे पॉलिसी मेकर्स आर फुली अंडरस्टैंडिंग कि चाइना के बिजनेस की हैबिट क्या है। चाइनीज़ आर वेरी क्लियर, लाइक, और मैं ये बात बार बार रिपीट करता हूँ कि चाइनीज़ इस मामले में बड़े अपफ्रंट हैं, वो खुल के ठोक के बताते हैं कि यार देखो हम लोगों ने इस तरह बिजनेस करना है, दिस इज़ आर अप्रोच टू इट। मेरा ख्याल जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है अब तक सो फा वो ये है कि हमारी लीडरशिप जो है ना इसको समझ नहीं आ रही है कि वॉट चाइनीज़ आर सेइंग वो एक लॉस इन ट्रांसलेशन वाली बात हो रही है। चाइनीज़ ये बड़ा एक गलतफहमी का शिकार है कि जिस तरह जो चाइनीज़ है ना उन्होंने वो जो वर्कर यहाँ पे पाकिस्तान में आ रहे हैं उनके इन प्रोजेक्ट्स के लिए, इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो वर्कर्स वापस चाइना चले जाएंगे, वो कभी भी नहीं जाएंगे चाइना, दिस इज़ अ चाइनीज़ हैबिट। चाइना जिस मुल्क में भी काम करता है ना वहाँ एक अच्छी खासी चाइनीज़ माइनॉरिटी डेमोग्राफिकली छोड़ के चला जाता है, आप किसी भी मुल्क की मिसाल उठा लें। एक तो वो इशू आ गया, दूसरा ये इशू आ गया कि हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री और जो हमारा जेन्युइनली बाकी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर या इवन बाकी जो नॉक ऑन प्रोजेक्ट्स हैं सीपेक से, उनको इस वक्त क्लियर किस्म की गाइडलाइंस या क्लियर किस्म का एडवांटेज ना किसी ने समझाया है, ना किसी ने प्रोवाइड किया है और ना ही नज़र आ रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड। हम लोग इसेंशली अपना मुल्क प्लेट पे रख के एक दोस्त मुल्क को दे रहे हैं कि यार आप आके हमारी मदद कर दो, एंड वो दोस्त मुल्क हमें स्ट्रेट अप बड़ा खुल के क्लियरली कह रहे हैं, एंड अगेन मैं ये बार बार स्पेसिफाई करता हूँ कि चाइनीज़ इस मामले में बड़े अपफ्रंट है कि जी हम लोग डेफिनेटली आके ये कर देंगे बट हम लोग अपने तरीके से करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग एल्स, हम लोगों ने इस तरीके से करना है, और हम लोग कहते हैं हाँ हाँ डेफिनेटली आप आके कर दो, बट एट द सेम टाइम हम लोग मुड़ के अपने लोगों को एक और स्टोरी सुनाते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि गवर्नमेंट को मे बी अपनी स्टोरी स्ट्रेट करने की ज़रूरत है इस मामले में और एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है अभी से, क्योंकि अगर ये एक्सपेक्टेशंस जो एक्चुअल इसका रिजल्ट है वो हम लोगों ने अभी से क्लेरिफाई ना की या हम लोगों ने उनके ऊपर काम ना किया तो दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डैमेजिंग इन द लॉन्ग रन, एंड चाइनीज़ जेन्युइनली आर गुड एलाइज टू हैव, चाइनीज़ शुड नॉट बी दी ओनली एलाइज वी हैव। कभी भी फॉरेन पॉलिसी इस तरह नहीं चलाते कि मेरा सिर्फ एक दोस्त है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, दैट इज़ हाउ यू रन फॉरन पॉलिसी, बट दीज आर सर्टन कंसर्न्स जी जो लाइक ऑब्वियसली आई हैड, जो कि हम लोगों के पॉपुलर डिस्कोर्स में नहीं हो रहे क्योंकि हमारे पॉपुलर डिस्कोर्स में चाइनीज स्टडीज़ के बारे में लोगों का कोई खास नॉलेज है भी नहीं है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं आई स्टडी ईस्ट एशिया, मैं ईस्ट एशिया के अंदर काम करता हूँ, आई हैव बिन ऑन फेलोशिप फॉर द लास्ट 2.5 मंथ्स इन ईस्ट एशिया, एंड उसके अंदर द ग्रोइंग डिस्कशन इन मोस्ट ईस्ट एशियन कंट्रीज इज़ द ग्रोइंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, एंड नॉट जस्ट द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, द चाइनीज़ पॉपुलेशन, जो लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन जिसको ये कहते हैं जो रह जाती है आफ्टर द प्रोजेक्ट्स आर डन, दैट इज़ चेंजिंग डेमोग्राफिक्स इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज एंड दैट्स इम्पैक्टिंग हाउ द इकॉनमी फंक्शंस, और उसके ऊपर डिस्कशन बड़ी खुल के हो रही है। पाकिस्तान में ये डिस्कशन अभी नहीं हो रही है बट इसकी अशद ज़रूरत है हमें करने की। तो एक तो इकॉनमी के ऊपर वो बात करना लाजम था और ज़रूरी था, दूसरी बात यह है कि मैं ताइवान के अंदर हूँ आजकल, एंड आई एम हेयर फॉर अनदर प्रॉब्ली 4 to 6 weeks, दरमियान में मैंने 2 हफ्ते के लिए आई हैव टू गो टू अपना, फनी इनफ आई हैव टू गो टू नेपाल एंड आई हैव टू गो टू बांग्लादेश एंड आई कॉन्ट कम बैक टू पाकिस्तान बिकॉज वो टाइम नहीं आ रहा, बट द रीज़न आई एम गोइंग फॉर दैट आई एक्सप्लेन अर्लियर कि आई एम टॉकिंग एट साउथ एशियन इकोनॉमिक फोरम about regional trade and regionalism and why trade is so important for Pakistan, why regional trade is so important for Pakistan. बट मोर देन दैट, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि मैं ताइवान के अंदर हूँ पिछले काफ़ी महीने से, एंड आई हैव सीन एंड आई हैव पिक्ड अप अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि ऑनेस्टली बड़े ज़बरदस्त पॉलिसी आइडियाज़ हैं, एंड आई विश टू गॉड वो पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें. उनमें से एक आइडिया जिसके बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करना चाह रहा हूँ इस दफ़ा, और वो आइडिया है टैक्सेशन का. दे हैव क्रिएटेड एंड आई डोंट नो हाउ दे केम अप विद दिस, बट इट इज़ ए फैंटास्टिक आइडिया. सो वॉट देव डन इज दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड रिसीट सिस्टम्स अक्रॉस द कंट्री. सो आप खोखे में भी जाते हैं ना, तो खोखे ने भी आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड रिसीट देनी है फॉर्मेट के ऊपर. उस रिसीट के ऊपर जो आपको दी जाती है उसके ऊपर एक आपकी वो रिसीट होती है कि कितने पैसे लगे, क्या क्या खरीदा, नंबर वन, नंबर टू, उसके ऊपर एक नंबर होता है. ठीक है जी, वो नंबर जो है ना उसका बुनियादी तौर पे एक लकी ड्रॉ होता है या कुरानंदाजी होती है हर 3 महीने के अंदर एक दफ़ा, और उस कुरानंदाजी के अंदर पता नहीं कितने इनाम हैं टॉप टू बॉटम, कोई अच्छे खासे में ख्याल में कोई 2-2.5 हज़ार इनाम है. ठीक है ना, जो के निकलते हैं. द होल पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज़ टू मेक श्योर कि वो जो आपका छोटा स्मॉल बिजनेस या आपका इवन कोने का करियाने वाला है ना, वो टैक्स पूरा दे, क्योंकि वो रसीद सिर्फ उन लोगों को मिलती है या वो कोड सिर्फ उन लोगों को दिए जाते हैं जो के टैक्सेशन के नेट के अंदर आते हैं. सो अनटिल एंड अनलेस वो अवाम को भी एक ऐसी आदत डाली है कि इवन एट द एंड ऑफ द डे 3 महीने के अंदर अगर आपका वो सारी रसीदें आप इकट्ठी करके रखते हैं अपने पास, थिंक ऑफ देम एज रैफल टिकट्स. वो रैफल टिकट के अंदर 3 महीने के बाद कुरानदाजी होता है, ढेर सारे नंबर आते हैं, आप ऑनलाइन जाते हैं, यू सर्च योर नंबर्स, अगर आपका कोई भी नंबर निकल आता है ना तो यू इमीडिएटली गेट अ गिफ्ट, यू टेक दैट अपना कंफर्मेशन नंबर टू अ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस या बैंक आपको पैसे दे देता है. अब लोगों को इतनी आदत पड़ी हुई है, इतनी आदत पड़ी हुई है कि क्योंकि हर बंदा जिससे भी मैंने बात की है पिछले 1 साल के अंदर कम से कम उसका कोई 400, कोई 500, कोई 600, कोई 1,000, एक बंदे का 4,000 NTD निकल आया था, विच इज़ अबाउट 1,000, अबाउट $100. तो बिकॉज लोगों को थोड़े थोड़े पैसे जीतने हैं, वो देर इज़ एन इंसेंटिवाइजेशन, एक वो गेमिफिकेशन टर्म है, लोग वॉलेंटरली ये चाहते हैं कि वो उस जगह पे अपना शॉप करें या उस जगह से बिजनेस करें जहाँ पे उन लोगों को वो कुरे वाली जो है ना जी स्लिप वो मिलेगी. एंड इट्स अ वेरी बेसिक मैंटालिटी बट इट्स वर्किंग. और मैं लिटरली वो स्ट्रीट वेंडर्स नहीं होते हैं जो खोखे लगा के बैठे होते हैं, मैं वहाँ पर जाके यानी एवरी नाउ एंड देन कभी नाइट मार्केट में जाना होता है, इवन वो रसीद जो है ना वो आपको वो देता है जो कि गवर्नमेंट वाली सैंक्शन रसीद है ना, जो स्टैंडर्डाइज रसीद है. और उसका आराम यह है कि बड़ा वो खुशी से आपको पकड़ाता है कि जी ये नंबर याद रखिएगा. एंड मेरा द होल थाट प्रोसेस ऑफ ऑल ऑफ दिस वॉज के हम लोग पाकिस्तान में ये क्यों नहीं कर रहे हैं. पाकिस्तान में हम लोग इतनी ज़्यादा बातें करते हैं कच्ची पक्की रसीदों की, यार छोड़ें यार, हमारे पास माशाल्लाह PITB भी है, हमारे पास बाकी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, हम लोग बैठ के एक स्टैंडर्डाइज्ड रिसीट सिस्टम तो क्रिएट कर सकते हैं ना. एंड इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस जनाब, अगर इफ इफ पुश कम्स टू शव हम लोग लिटरली ताइवान से आके वो बोरो कर सकते हैं, और ये लोग बोरो करने को तैयार हैं. क्योंकि मैं इनके फॉरेन ऑफिस बैठा हुआ था अबाउट अ वीक गो, तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि यार आई विश टू गॉड कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हम लोग आप लोगों से आइडियाज़ किसी तरीके से ले सकें, एंड देर मोर देन विलिंग टू शेयर इट, कि जी आप मांगने वाले बने, हम लोग देने वाले बनते हैं. तो दिस इज़ जस्ट अ रैंडम थॉट एंड दिस इज़ एन आइडिया दैट आई सॉ, आई सीरियसली थिंक पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, और बड़ा प्रोग्रेसिवली यार आइडिया इज़ फिनॉमिनल ना. कितना सिंपल आइडिया है कि आप गेमिफाई कर दो लोगों की स्पेंडिंग को और उसको उस तरीके से टैक्स नेट में ले आओ, एंड इट्स सो सिंपल एंड येट सम हाउ वी नेवर थॉट ऑफ इट, बट नाउ आई होप टू गॉड दोज हु लिसन टू मी कैन आर्ग्यू अबाउट दिस आइडिया. दैट बींग सेड जी, बात लंबी होगी, बट एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. जब से मैंने इसको iTunes पे डाला है द डाउनलोड्स हैव गॉन अप, द सब्सक्रिप्शंस हैव गॉन अप, थैंक यू सो मच. मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. प्लीज़ अपने क्वेश्चंस भेजा करें, प्लीज़ अपनी ओपिनियंस भेजा करें. मेरा ट्विटर के ऊपर ID इज़ @AdnanRasool, माई इंस्टाग्राम इज़ @AdnanRasool. आप लोगों में से ज़्यादातर को मेरा ईमेल पता, अगर नहीं पता तो जनाबे वाला, मुझे ट्विटर के ऊपर आप एक ट्वीट कीजिए और आई विल गेट बैक टू यू. एनी आइडियाज़ ऑन एनी टॉपिक्स दैट यू वुड लाइक टू सी मी कवर एंड डिस्कस आर वेलकम. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. एंड इंशाल्लाह आई प्लान टू डू अ स्पेशल एपिसोड फ्रॉम नेपाल व्हाइल आई एम देयर. आई विल ट्राई टू हैव वन और टू गेस्ट ऑन व्हाइल वी डू दैट. थैंक यू सो मच जी, एज ऑलवेज. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हफ्ते की सीधी बात. एंड हैव ए फिनोमिनल वीक. And I will catch up with you on Saturday now.